Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की संजीदा चाल पर भी चर्चा करेंगे. चर्चा को अपने विचारों से समृद्ध करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, अभिवादन स्वीकार कीजिए मार्केट मंत्र का.
वार्म वेलकम विशाल.
थैंक यू राजेश जी. नमस्कार प्राची जी. धन्यवाद.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने हेडलाइंस.
Prime Minister Narendra Modi says India's robust economy is the beacon of hope for the world amid reshaping global supply chains. Government has ensured energy availability and affordability even as hostilities continue in West Asia, says Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri. Adds India is well stocked with crude oil and inventories of key petroleum products. And most Asian stock markets end in negative territory.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया आकार देने में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच विद्युत उपलब्धता और वहन क्षमता को सुनिश्चित किया है. उन्होंने बताया कि भारत के पास कच्चे तेल और वैश्विक पेट्रोलियम उत्पाद का आवश्यक पर्याप्त भंडार है और एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांक नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए रुख करें आज की पहली खबर की तरफ, जाने की क्या है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का व्यापक प्रभाव दिख रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एमएसएमई के लिए अपनी उत्पादकता को और बढ़ाने, गुणवत्ता मानकों को बेहतर करने और डिजिटल प्रक्रियाओं को उन्नत करने तथा सुदृढ़ मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने का यही सही समय है. बजट के बाद प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाने के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित किया. श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के साथ भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विश्व के लिए आशा की किरण बन गई है. उन्होंने ये भी कहा कि आज विश्व विश्वसनीय साझेदार देश की तलाश में है. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के पास इस दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर है.
मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज देश कोर इंडस्ट्रियल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और इस मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है. डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करके हम अपने ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि विनिर्माण एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमईज और शहरी केंद्र अलग थलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही आर्थिक संरचना के परस्पर जुड़ते स्तंभ हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा और संकल्प स्पष्ट है, आर्थिक निर्माण करना, अधिक उत्पादन करना, अधिक संपर्क स्थापित करना और अधिक निर्यात करना.
मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है. कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से लागत कम होती है, वेल प्लान्ड शहर इन्वेस्टमेंट और टैलेंट दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। इन सभी पिलर्स को इस साल के बजट ने बहुत मजबूती दी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगों से अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए उद्योग, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। विशाल, एमएसएमईज की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों का ही ख्याल आता है। सरकार किस तरह से इन दोनों पहलुओं पर काम करती नजर आ रही है?
देखिए, एमएसएमईज में जिस तरह के पुश की आवश्यकता थी प्राची जी, और जिस तरह के बदलाव की, रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी पूरे सेक्टर को लेकर, या इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, वो सब कदम उठाए गए हैं। अब वो इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि मोटे तौर पर आप देखें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सबसे एमएसएमई कुछ अलग नहीं है। एमएसएमई को एक फीडर फनल हम मान सकते हैं, यानी कि छोटे और लघु उद्योग। अब ये छोटे और लघु उद्योग क्या करते हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और जो अलग अलग सब सेक्टर्स हैं उनकी हम बात करें, या हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, तो ये जो छोटी इकाइयां हैं, यहां पर वो काम होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हम कह सकते हैं बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके, और जो जिसे वर्कफोर्स जिसे कहा जाए, यानी कि रोजगार के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक हमारी जो वर्कफोर्स है उसका एक खासा महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसएमई सेक्टर में कार्यरत है। तो यानी कि पहले इसे अच्छे तरीके से रेगुलराइज करने की जरूरत थी, फिर उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी। अब जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी सेक्टर के लिए देखी जा रही है, अब उम्मीद की जाती है एमएसएमई सेक्टर से परफॉर्म करने की। तो यानी कि अगर एमएसएमई सेक्टर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो उसका सीधा असर आपको जो बाकी सेक्टर्स हैं उन पर देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर।
जी विशाल, आपने परफॉर्मेंस की जहां तक बात की तो परफॉर्मेंस को अगर हम परफॉर्मेंस के मद्देनजर अगर हम देखें तो एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इकोसिस्टम है वो तभी मजबूत कर पाएंगे जब इंफ्रा और लॉजिस्टिक बेहतर हो, आपने जैसा अभी बताया। तो सरकार की प्राथमिकताओं में आप इन पर कितना काम देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, सरकार अब उम्मीद कर रही है प्राइवेट सेक्टर से कि ना केवल वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो गुणवत्ता है, जैसा कि बार बार हमें सुनने को मिलता है सरकार के वक्तव्यों में भी और जो मार्केट लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स में भी, कि अगर हमें वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक की प्लेयर बनना है, एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनना है, तो हमें अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर होना चाहिए, और क्वालिटी बेहतर करने के साथ साथ, और बल्कि क्वालिटी बेहतर करने के लिए ही आपको R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सब पर ध्यान देना होगा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए उस पर ध्यान देना होगा। तो ये उम्मीद सरकार की भी है और ये उम्मीद जो अलग सेक्टर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके लिए एमएसएमई के जो मेजर प्लेयर हैं वो काम करते हैं, उनकी भी यही उम्मीद है। क्योंकि अगर किसी कार में, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर किसी कार में एक कोई छोटा उपकरण लगाया जा रहा है ओईएम के तौर पर, अगर कोई एमएसएमई सेक्टर की कंपनी है वो काम करती है किसी बड़ी ऑटो कंपनी के लिए, तो अगर वो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं रखेगी तो वैश्विक स्तर पर उस कार कंपनी को फायदा नहीं होगा, उसे जगह नहीं मिलेगी, और अगर उसे जगह नहीं मिलेगी तो एमएसएमई सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनको कोई मुनाफा नहीं होगा, वो केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री तक ही सीमित रहेंगे।
So, Vishal, in light of what you just said, the government's intention and resolves are very, very clear. They want to build more, they want to produce more, they want to connect more, they want to export more. So what more can the government do so that all this comes into place?
The government seemingly, Rajesh ji, has taken a lot of steps in terms of ensuring that there is no that there is no policy issues. One, two, there is ease of doing business. Three, exhorting the industry to match the step with the government's investment in particular sectors, and specifically when we're talking about MSME as well. And you're right, build more, do more as well. But largely, now the question remains, as I was saying earlier, is while building more, while doing more, while moving further ahead, we also need to, you know, these industries, these sectors also need to keep a very close watch on the quality aspect of it. Quality is something which cannot be compromised, because now we are aiming for the global competition. Now we are aiming for the global markets. And when we aim for the global markets, one thing which we can never compromise is on quality, because there are too many larger players out there in the play. That's one. And two, R&D, because, you know, largely 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, there was not much happening on R&D, because we were still, you know, finding our feet. Our industries were still finding our feet, finding their feet on the ground in different sectors. Now the technology is also improving and changing with each passing day. That means that we will have to be abreast of the times and ensure that we do match the step in terms of research and development also.
विशाल, ये तो एक बात रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्लान ट्रेड इकोसिस्टम, इसका क्या तात्पर्य है, अगर आप इसे इस पर प्रकाश डालकर समझाएं तो?
देखिए, उसका उस इकोसिस्टम का तात्पर्य सीधा है कि आप एक प्लान्ड तरीके से आगे चलेंगे. एक इकोसिस्टम सरकार ने क्रिएट करने की कोशिश की है. अब जो मार्केट फोर्सेज हैं और जो इंडस्ट्री है, उनको उस इकोसिस्टम का फायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन एक प्लान्ड तरीके से करना पड़ेगा. और एक ट्रेड इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है, जिसमें जी बिल्कुल एक ट्रेड इकोसिस्टम की तरफ सरकार आगे जाना चाह रही है. पॉलिसी सरकार की दर्शा रही है कि आपको उस तरफ जाना है, और उसके लिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं, वो कई बार हमने बजट स्पीचेस में लगातार एक के बाद एक सुने हैं, देखे हैं, और उन कदमों पर अमल भी करने की कोशिश की गई है. लेकिन अब जो इंडस्ट्री है, उसे थोड़े से दो कदम आगे बढ़ाने होंगे उस इकोसिस्टम को थोड़ा सा और रोबस्ट बनाने के लिए.
Moving on, amid the outbreak of hostilities in West Asia and the evolving global energy situation, the government has ensured both availability and affordability of energy for its population by diversifying its resources. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India is the third largest importer, fourth largest refiner, and the fifth largest exporter of petroleum products globally, and has sufficient energy reserves to deal with the ongoing situation. Highlighting the country's preparedness, the ministry said that India is well stocked with crude oil and inventories of key petroleum products, including petrol, diesel, and ATF, to deal with short-term disruptions. Following the rising disruption in the Western Asia region, the ministry has also established a 24/7 control room to continuously monitor the supply and stock position of petroleum products across the country and safeguard the interests of Indian consumers. In this regard, the Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, briefed the media on the country's readiness in the current circumstances. India today strongly reiterated its call for dialogue and diplomacy in the ongoing conflict in the West Asian region. In her statement, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, India is raising its voice clearly in favor of an early end to the conflict, stating that trade and energy supply chains also traverse this geography. Mr. Jaiswal underlined that any major disruption has serious consequences for the Indian economy. As a country whose nationals are prominent in the global workforce, India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping. The spokesperson said some Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of such attacks in the last few days. Mr. Jaiswal said the conflict has not only intensified in recent days but also spread to other nations. The destruction and deaths have mounted even as normal life and economic activities have come to a halt. The spokesperson said these developments evoke anxiety as a proximate neighbor with critical stakes in the security and stability of the region. Vishal, first and foremost, let's discuss what the Petroleum Ministry said about being very, very sufficient, at least for 25 to 30 days when it comes to petroleum products, and that people do not need to worry. The people of India need not worry about it, as we have sufficient stocks stockpiles with us. In such a scenario, what should the government be doing further to ensure if after 25, if this war continues for more than 20 days, what should we do so that we are sufficiently stocked? Should we go to Russia? Should we, go to America to get, where should we go so that we are sufficiently stocked?
Well, first, it's too early to think of that in terms of us. But of course, it's not at all early for the policymakers.
Yeah.
It's not at all early for the policymakers. And I'm sure they've already drawn out plan B and C and D as well. Now, in terms of options, Rajeshji, of course, these are changing geopolitical scenarios. It's not the same situation as it was around 15 days ago. When we were negotiating a deal with the United States of America, trade deal. Also, it is not the same scenario as it was around 3 months ago when we were getting oil from Russia, largely. A lot of things have changed in the past, and things are changing quickly right now. But let's understand one thing. Our basket in terms of where we import from does not only comprise of Middle East. We also have, supply chains from Latin America. We also have supply chains from America. We also have supply chains from Russia, as you were pointing out, although as part of the deal, they were put on hold. But then again, that's what I'm saying. The geopolitical scenario is changing quickly. And of course, we will have to think from our interest, from our national
interest. Which India has always maintained.
Yes, indeed. And when push comes to shove, we have always had an independent foreign policy, not governed by any other interest other than the national interest. So, of course, if the push comes to shove, I'm sure the plan B, C or D will involve everything which should be done to ease the pressure on the citizens. But so far, so good. And I believe 25 days is a very long time in a geopolitical scenario, especially in today's age and era when, things change overnight. We were talking about how dialogue is going on between, Israel, America on one side and Iran on the other side. And a few hours later, there were missiles raining from both sides. So things are going to change very quickly. We will, of course, our policymakers, we expect them to adapt as well and keep the nation's interest at the highest level. And I believe there's nothing to worry as far as, oil reserves from an Indian public point of view is concerned. As a common citizen, I at least am not worried as far as oil reserves are concerned.
Vishal, hum West Asia ke tanav ki baat kar rahe hain, to sandarbh mein mere zehen mein ek khayal aaya, is tarike ki surkhiyan jab padhi jati hai top notch akhbaron mein aur news sunne ko milta hai ki Bharat ke jo vidyut kshetra ke jo aayat hai wo 50% se अधिक, correct me if I'm wrong, वो Strait of Hormuz की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या कोई हमारी energy security पर कोई दबाव पड़ने जैसा कुछ है, या हम लोग ठीक अवस्था में चल रहे हैं?
देखिए, इस वक्त तो हम ठीक अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन Strait of Hormuz जो है, वहां से लगभग पूरे विश्व का अगर हम तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की अगर बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता जाता है. अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे असर पड़ता है तो सप्लाई चेन्स पे असर पड़ेगा और वो पिछले लगभग 48 घंटे में हमने देखा है. जो ईरानियन पक्ष है, यानी कि जो ईरानी फौज है और जो ईरानियन सरकार है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. अभी लड़ाई जारी है दोनों तरफ से. कौन जीतता है और कितने समय में जीतता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो प्रेशर है और उसके चलते सप्लाई चेन्स जो हैं जो बाधित हुई हैं, वो कितने दिनों तक, क्योंकि केवल हमारी बात नहीं है, कई और देश भी हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं और खासतौर पे यूरोपियन देश ही हैं. पश्चिमी देश ही हैं, तो वो उनका उनको जो उन पर जो असर पड़ेगा वो कितने दिनों तक उस असर को झेल पाएंगे, क्या उनके पास भी कोई, जैसे कि राजेश जी पहले कह रहे थे, क्या उनके पास भी कोई प्लान बी प्लान सी है, अगर है तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया था कि सालों तक तो नहीं चलेगी लेकिन थोड़ा सा लंबी चलने की उम्मीद है। अब वो थोड़ा सा लंबा कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी तो तब रशिया की तरफ से भी कहा गया था कि हम कैंपेन बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन शायद 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो वो कैंपेन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है और उसका असर भी पूरे विश्व को देखने को मिला।
इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी सी एंड डी।
इनफैक्ट इंडीड राजेश, यस।
ओके, मूविंग ऑन, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड 7% टुडे. The escalating conflict in West Asia and threats to ships passing through Strait of Hormuz heightened fears of supply disruptions from the key oil-producing region. Brent crude was trading over 7.7% higher at $83.69 per barrel, and WTI crude was also trading 7% up at $76.20 per barrel when reports last came in. So the impact on India, Vishal, is higher crude prices, which will increase the import bills sufficiently.
Yes, indeed.
And today we're talking about 7% increase. I do not know what will happen tomorrow. It could go up to 8, 10. Till what level can India take it?
Well, that depends upon, how we exercise our, options in the market. Because as I was saying earlier, of course, Middle East is the main basket for everyone, supply basket for everyone, not only for India. But then there are other options as well. How quickly are we going to adapt to that? That's one. Two, again, how long will the war go on? Three, how soon can the both warring sides come to a conclusion that, okay, Strait of Hormuz is really, really important, because there are several players, In fact, the suppliers in the Middle East, all these countries, they're also at a loss, They have to close their, their oil facilities. They cannot, drill and refine oil or natural gas further. So it's going to hurt them economically as well. So how will they react? Because it's not just about us. It's about everybody in the world. And everybody in the world will have to come to a very, sane conclusion. What that sane conclusion will be, that's one. But more important than that, how soon can everybody come to a sane conclusion? That is what it is, because we on our side, that is India on its part, has time and again told the world in every conflict situation that war conflict is not the way out, because this is going to have a very strong negative impact economically on everyone involved. In fact, on everyone not involved as well.
Okay. War, Vishal, does not just affect borders. It affects, as we just read out, oil, it affects currencies, it affects liquidity, and ultimately it affects earnings, multiples, and market direction. In such a scenario, what would you advise to the investors?
Well, you're right there. I must say that oil is up, markets are down. Gold and precious metals are down. Now, markets are down to such an extent that although Indian markets were on a holiday today on account of Holi, but when we take a closer look towards other Asian markets, I was looking at it, South Korea's KOSPI has had a very humongous tumble since August 2024. It is the highest fall which KOSPI has seen. China's Shanghai Index, Hang Seng in Hong Kong, Japan's Nikkei, German's DAX, everything has come down. So that shows. That shows the global impact of it all around. Now, precious metals are also down. As far as investors are concerned, what we need to do, as far as investors are concerned, we need to keep a very close watch on two things, apart from, of course, the geopolitical situation, because that's the key factor. One is, how is dollar behaving? Because ultimately, the precious metals are linked with the dollar. And two, in terms of rates, whether the Federal Reserve brings down the rates on 18th, although there is the odds are 60% against it. So if the rates doesn't come down, then, looks like the precious metals will go up, because ultimately, geopolitical situation does amount to a pressure point where You go to the safe haven, and the safe haven is precious metals, gold, silver, and other.
So as oil prices are spiking amid concerns over supply routes and production stability, gold in the US dollars are strengthening as safe havens demand rises. So therefore, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 2.5% down at 1,62,590 rupees per 10 grams, while silver was trading over 6.7% lower at 2,61,340 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 2.4% गिरकर 1,62,005 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मार्च अनुबंध वाली चांदी लगभग 5.2% की गिरावट के साथ 2,56,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. आइए जानें हमारे घरेलू बाजार के बारे में. श्रोताओं, देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज होली के उपलक्ष पर बंद रहे. पिछले कारोबारी सत्र में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों के उत्साह पर भारी असर पड़ा और घरेलू बाजार धड़ाम से गिरे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,048 अंक गिरकर 80,239 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 313 अंक फिसलकर 24,866 पर बंद हुआ. विशाल, हम देख रहे थे इसराइल जो कि वॉर में सीधा पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वहां के जो मार्केट हैं, तेल अवीव को हमने देखा कि 4.6% लगभग अप है. वहां की मार्केट में इतना उत्साह है, लेकिन बाकी मार्केट्स जो एकदम ढहे पड़े हैं.
देखिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं, उनके यहाँ एक सेंटिमेंट है कि हम लड़ाई में हमारा पलड़ा भारी है, तो यानी कि वो सेंटिमेंट्स काम कर रहा है. लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, बाकी इकोनॉमीज को अगर देखें जिनका शायद इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, चाइनीज मार्केट है, साउथ कोरियन है, जैपनीज मार्केट है, वो चरमराए हुए हैं, क्योंकि उनको वो इसको इकोनॉमिक एंगल से देख रहे हैं. वहां जो सेंटिमेंट्स हैं वो मेयरली इकोनॉमिक हैं. और सोमवार को जो हमारे बाजार में भी देखने को मिला वो भी मेयरली इकोनॉमिक सेंटिमेंट था. और ऐसा लाजमी है, जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसी बड़ी उथल पुथल होती है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो, तो बाजारों में इस तरह की हालत देखना लाजमी है. लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इस बात पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा कि कितनी जल्दी ये लड़ाई खत्म हो सकती है.
बिल्कुल विशाल, आइए अब जाने श्रोताओं की रुपए की चाल कैसी रही. आज भारतीय मुद्रा बाजार होली के उपलक्ष्य पर बंद रहा. डॉलर सूचकांक जो छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती मापने वाला है, वो दिन के कारोबार में 99.34 पर कारोबार कर रहा था. आइए रुख करें एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में आज भारी गिरावट देखी गई. पश्चिम एशिया में संघर्ष लगातार चौथे दिन बढ़ने के कारण ये गिरावट देखने को मिली. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 7.2% से अधिक गिरा. जापान का निकेई 3%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.4% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.1% नीचे आया. वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.5% अधिक पढ़ा. आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी गिरावट देखी गई. जर्मनी का डैक्स 3.7% से अधिक, फ्रांस का कैक 3% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 2.6% से नीचे कारोबार कर रहा था.
And Wall Street ended mixed yesterday, recovering early losses in a volatile session after tensions in West Asia unsettled global markets. Gains in energy, technology and defense stocks helped offset declines in other sectors. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose nearly 0.4%, while the S&P 500 eked out a marginal gain. In contrast, the Dow Jones Industrial Average declined by more than 0.1%. Very briefly, Vishal, in the coming days, how do you see, say tomorrow, how will the Indian markets open and react?
Well, of course, I expect Indian markets to have the same sentiments as the other global markets, because this is a global geopolitical crisis. It's a war unfolding.
Volatility is going to be the
volatility is likely to be high, and of course, you know, the investors will look for safe havens as well. But again, safe haven, which I was earlier pointing out, gold and silver, and all these prices, it's going to take time to stabilize.
Dhanyavaad, Vishal.
And before we close, the headlines once again. Prime Minister says India's robust economy is a beacon of hope for the world amid reshaping global supply chains. Government has ensured energy availability and affordability even as hostilities continue in West Asia, says Union Petroleum Minister. He adds India is well stocked with crude oil and inventories of key petroleum products. And most Asian stock markets end in negative territory. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।